मतलब करते हैं मैं और हम गाड़ी मैंने से थाड़न आई दियाड़ी मैंने उबर छाया जब मैंने तो सीढ़ी अनुभव
जी, आपकी आवाज बहुत ही धीमी आ रही है।
अभी ठीक आ रही है?
प्रतिबिन तमने संभाई छे सरखो
ना, बहुत देरी है आवाज आपकी।
अभी ठीक है?
हाँ अभी ठीक है,
बेटर है। हाँ
ओके ओके। हाँ तो हम लोग आश्रफ और बंधक पर डिस्कशन कर चुके हैं और पंडित दौलत राम जी ने दो सीख दी है हमको अभी तक कि एक तो यही आत्म को दुख कारण पाते इनको तजिए। ये किसके लिए बोला उन्होंने? आश्रफ तत्व के लिए। आश्रफ तत्व कैसा है? आत्मा के लिए दुखदायी है, बराबर। श्री समय सार जी ने भी बताया अशुचिपना विपरीतता इन आश्रमों की जानकर और दुख कारण जानकर इनसे निवर्तन जीव करे। क्या? कि इन आश्रमों का अशुचिपना, इनकी विपरीतता, स्वभाव से विपरीतता। क्यों? क्योंकि स्वभाव चेतन है और हम जड़ हैं, सॉरी आश्रम जड़ है। विपरीतता कैसे हो गया? अपोजिट स्वभाव है और इसके कारण एक तो अशुचि है और विपरीत है तो वो कैसे है? दुख के कारण है। तो हमें जितने भी दुख है उनका जो मूल कारण है वो कौन है? आश्रव। ठीक है।
हाँ।
बंध तत्व के लिए क्या उन्होंने बोला? सीख दी। आश्रव को तो बोला कि ये आत्मा को दुख के कारण है इसलिए इनको छोड़ दीजिए। और बंध तत्व के लिए क्या बोला? बंधन कबहू ना
सजिए।
सजिए, बराबर। सजना मतलब आप बंधन से मत सजो, मतलब सजते हैं तो हम हमेशा वी टेक द यूज ऑफ, हम बाहर की चीज का यूज लेते हैं, आभूषणों का, ज्वेलरी का। तो सजने के लिए हमें हमेशा बाहर की चीज दिखती है, राइट। और जो बंध है ये भी नए कर्म बाहर से आ रहे हैं और ये आपके साथ एक क्षेत्र का हमें जुड़ जाएंगे, मतलब हम बंध से सज जाएंगे, आत्मा डेकोरेटेड हो जाएगा पूरा बाहर के नए सुदगल परमाणुओं से, कारमांड प्रक्रियाओं से। तो इस बंधन से आप मत सजिए। क्यों नहीं सजू मैं? क्योंकि ये जो बंधन है ये वाला बंधन बिना उदय के नहीं आएगा। ये बंध हुआ है तो इसके उदय होंगे। उदय दो प्रकार के होंगे। कौन कौन से दो प्रकार के उदय होंगे? एक पुण्य रूप, एक पाप रूप। उसमें प्रीडोमिनेंटली कौन सा वाला उदय रहेगा? क्योंकि घाटिया कर्म का उदय है तो पाप का उदय तो कांस्टेंट रहेगा और पुण्य का उदय जैसे जैसे हमारी स्पेशल सिचुएशंस होगी, जैसा जैसा हमारा घातिया कर्म में चारित्र मोहिनी और दर्शन मोहिनी का उदय रहेगा उसके हिसाब से हम कल्पनाएं करेंगे, विल इमेजिन। तो एक ही चीज में कभी हम इष्टपने की कल्पना करेंगे और हम उसको नाम देंगे कि हमारे को पुण्य का उदय है और फिर थोड़े टाइम बाद उसी चीज में हम अनिष्ट की कल्पना करेंगे और बोलेंगे हमारे तो पाप का उदय है। तो ऐसे ये पुण्य पाप के उदय चलते रहेंगे यदि हम अपने आप को बंधन से सजाते रहेंगे तो। राइट
हाँ।
यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन? चार प्रकार के बंध थे, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। बंध की एंट्री हुई थी योग के द्वार से, योग से जो बंध हुआ था वो प्रकृति और प्रदेश बंध था। हमने इनविटेशन दिया था कि कितने कर्म आएंगे और किस किस जाति के आएंगे, किस किस प्रकृति के आएंगे, टाइप के आएंगे। योग से ये बंध हुआ। अकेली योग से होने वाले बंध को ईर्ष्या पथाश्रव कहते हैं, अकेली इतना ही हो तो। बट योग के साथ यदि कषाय भी आ जाए तो स्थिति और अनुभाग बंध आ जाता है। और इस पूरे चारों प्रकार के बंध को होने का कारण को बोलते हैं कौन सा आश्रम? सांप्रदायिक आश्रम। राइट यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा? राइट यहाँ तक हमने डिस्कशन बहुत अच्छे से कर लिया। अब हम आगे चलते हैं और आगे का जो तत्व है वो संवर और निर्जरा, ये दो तत्व चलेंगे। ठीक है, तो ये जो छेड़ाना ग्रंथ है इसमें चित्र बने हुए हैं कुछ, जिसमें बोध का एक चित्र, नाव में एक नाविक बैठा हुआ है। बहुत फेमस एग्जाम्पल है, एक नाव एक समुद्र में है और वो उस पर एक नाविक जा रहा है और फिर नाव में क्या होता है, अचानक से छेद हो जाता है और उसमें पानी अंदर आने लगता है। तो नाविक सबसे पहले क्या कर रहा है, उस छेद को बंद करता है। राइट
हाँ।
क्यों छेद को बंद क्यों करते हैं?
तो पानी अंदर ना आवे।
अंदर आएगा तो क्या प्रॉब्लम है?
अंदर आएगा तो फिर नाव डूब जाएगी।
ओके, और नाव डूब जाएगी तो क्या प्रॉब्लम है?
सब नाविक
नाव डूबेगी ना, आदमी थोड़ी डूबेगा। तो हमारा इंटेंशन नाव को बचाने का है कि आदमी को, कि दोनों को?
आदमी को बचाने का है ना पर्पस।
तो फिर पानी तो नाव में भर रहा है।
आदमी नाव में बैठा है ना।
ओके,
तो नाव को, नाव को बचाएंगे तो आदमी भी बच जाएगा।
ओके नहीं, बट व्हाट इफ ये जो आदमी है फिर ये नाव की इतनी ही चिंता में लग जाए कि आदमी अपने आप को ही भूल जाए, वो भी तो प्रॉब्लम है फिर। राइट, तो देखिए इसमें दो चीजें एक साथ चलेंगी। ये जो एग्जांपल है, एग्जांपल एक देश होता है, ठीक है। यहाँ पर यूजुअली जो एग्जांपल लेते हैं उसमें नाविक को आत्मा बोल लेते हैं, नाव को अजीव तत्व बोल देते हैं। तो नाविक इज अजीव तत्व, द बोट नाव वो अजीव तत्व है और ये जो सब पानी है ये कार्माड वर्गणाए है, ठीक है। तो अब हर एक चीज के दो दो भेद बनेंगे। आश्रव कितने प्रकार का? दो, द्रव्याश्रव भावाश्रव। बंध कितने प्रकार का? दो प्रकार का, द्रव्य बंध भाव बंध। संवर कितने प्रकार का? दो प्रकार का, द्रव्य संवर भाव संवर। निर्जरा दो प्रकार की, द्रव्य निर्जरा भाव निर्जरा। और मोक्ष भी कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का, द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष। ठीक है, ये द्रव्य और भाव के दो भेद क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अब यहाँ पर दो अलग अलग चीजों में काम हो रहा है। हमने जब सात तत्व का डिस्कशन शुरू किया था तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जीव और अजीव तत्व में कौन से द्रव्य आ जाते हैं, कितने द्रव्य आ जाते हैं छह द्रव्य में से? हेलो हेलो
हाँ
छह छह आ जाएंगे ना,
द्रव्य होते हैं
जीव में, जीव आएगा और अजीव में और बाकी के पांच आएंगे।
अच्छा जीव तत्व में सारे अनंत जीव आएंगे कि एक दो जीव ही आएंगे?
तो तत्व की बात कर रहे हो या द्रव्य की?
तत्व
मैं
में
पूछ रहा हूँ, जीव तत्व और अजीव तत्व, ये दो तत्व हैं और हमारे पास छह द्रव्य होते हैं, जीव पुत्र मतलब आकाश काल, तो इन दो तत्वों में छह में से कितने द्रव्यों का समावेश हो जाता है, कितने द्रव्य आ जाते हैं?
जीव में तो मैं अकेला ही आऊंगा ना, उस मतलब मैं मेरे
जीव तत्व में
जीव में आएंगे,
द्रव्य आ गया जीव तत्व में, और अजीव तत्व में कितने द्रव्य आए फिर?
दूसरे छह, सारे छह मेरे अलावा, सारा
सारे के सारे। ओके ठीक है। अच्छा, और इस पूरे विश्व में छह द्रव्य के अलावा क्या है?
कुछ नहीं,
कुछ नहीं।
पूरे विश्व में छह द्रव्य के अलावा तो कुछ होगा
नहीं?
सिद्ध शिला देखो, सिद्ध शिला है छह द्रव्य के अलावा, एक तो ईशक प्रागधार आठवें नंबर की भूमि, वो भी छह द्रव्य के अलावा, बाहरी तो पड़ती है, वो छह द्रव्य में आती है क्या?
हाँ, सारा विश्व छह
द्रव्य में आ जाएगा। करेक्ट, वो स्फटिक मणि के आकार की, मतलब एक वो वाइट एक ऑब्जेक्ट है, वो फुटगल है। तो दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है विश्व में जो छह द्रव्य के बाहर का हो, और जो छह द्रव्य है वो जीव तत्व और अजीव तत्व इन दोनों में आ जाते हैं बराबर। तो ये फिर बाकी के पांच तत्व रहेंगे, ये क्या रहेंगे? जब पूरी दुनिया की सारी कहानी जीव और अजीव तत्व में सिमट गई, तो ये पांच नई चीजें हम क्या बता रहे हैं? क्या ये पांच जो नई चीजें हैं, आश्रम बंध संभव निद्रा मोक्ष, ये अवस्तु है, ये वस्तुएं नहीं है? और यदि ये वस्तुएं हैं तो वो तो जीव और अजीव तत्व में आ गए, आप रिपीट क्यों कर रहे हो? राइट,
दोबारा रिपीट करेंगे अनुभव जी।
मैं सिंपल से एक क्वेश्चन है कि इस दुनिया में छह द्रव्य के अलावा कुछ भी नहीं है
बराबर,
और सारे के सारे द्रव्य जीव और अजीव तत्व इतना कहने पर आ जाते हैं, ऑल इंक्लूडिंग, एवरीथिंग इज इंक्लूसिव। यदि हमने जीव और अजीव तत्व बोल दिया तो सब पूरी दुनिया आ गई, कुछ भी नहीं छूटा। राइट, तो अब यदि आप इन दो नाम के बाद पांच नाम और बता रहे हो, आश्रव पन समर निजरा मोक्ष, तो दो केस हो सकते हैं, या तो दुनिया में छह द्रव्य के बाहर भी कोई चीजें हैं जिनके आप नाम गिना रहे हो, या फिर ये जो पांच नाम आप गिना रहे हो ये अवस्तु है, ये वस्तुएं ही नहीं है, और जो वस्तु नहीं है मैं उसके बारे में क्यों जानूं? राइट, तो ये पांच चीजें क्या है? ये पांच चीजें कोई अलग से द्रव्य नहीं है, ये पांच, ये जो शुरू में जीव तत्व और अजीव तत्व बोला, इन दोनों के आपसी कम्युनिकेशन का रिजल्ट है, इन दोनों के विशेष है, इन दोनों की पर्याय है। राइट, देखिए छह द्रव्य में तो सारे द्रव्य आ गए और जीव अजीव में भी सारे द्रव्य आ गए, बट ये जो सात तत्व हम पढ़ रहे हैं, इस सात तत्व में अब हम जीव अजीव को जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य ऐसा नहीं देखने वाले। अब मुझे नहीं देखना कि संसार में कितने आत्मा दुखी हैं। आप वो तब तक बोलो कि जी त्रिभुवन में जीवन सुख चाहे दुखते भयवन, ये सब बात हो गई, वो द्रव्य की अपेक्षा हो गई, अब तो मुझे तत्व की अपेक्षा बात करनी है। अब मुझे अनंत जीव दुखी है कि सुखी है, इट डजंट मैटर टू मी, क्योंकि महावीर भगवान के मोक्ष हो गया तो उसे मुझे क्या मिला? वो तो अभी ठीक है, मेरे पांच इंद्रियां हैं, मैं संगी हूँ, मैं इस काल में महावीर भगवान के युग में बैठा हूँ, और भाग्य से मैं जैन फैमिली में हूँ और मैंने स्वाध्याय किया, तो मुझे पता है कि महावीर भगवान कौन है। बट क्या आपको पता है, आप पिछली जो लास्ट से लास्ट चौबीसी थी वहां भरत क्षेत्र में कौन से चौबीसी तीर्थंकर थे? Do you even know कौन था वो? You know, I don't know. ऐसी तो अनंत चौबीसियां निकल गई इस भरत क्षेत्र की, और मुझे नहीं पता उन सब की तीर्थंकर, जब उनका परिचय नहीं तो how does it matter कि वो मोक्ष में है कि नहीं है to you? हमें तो कुछ भी नहीं पता उनके बारे में, महावीर भगवान की थोड़ी बहुत स्टोरी भी पता है, ठीक है, बट वो इसलिए बताए क्योंकि इट वॉज टोल्ड टू अस, बट उससे मुझे कुछ मिल गया हो, नो आई डिड नॉट गेट एनीथिंग, करेक्ट। तो अनंत जीवों के मोक्ष से या उनके निगोद में रहने से, नरक में जाने से, स्वर्ग में जाने से, इट डजंट मैटर, मुझे नहीं फर्क पड़ता अब कुछ, मुझे किससे फर्क पड़ता है कि मेरा क्या। सो आई हैव कैप्ट नाउ दिस होल केस अगेंस्ट वन वर्सेस ऑल, एक मैं जीव तत्व एंड अगेंस्ट मी वर्सेस ऑल दी अजीव तत्व, मेरे तो सारे जितने भी अजीव तत्व हैं। सो तुरंत क्वेश्चन हुआ कि जब आप यू आर ट्राइंग टू डू इट वन वर्सेस ऑल, आप जीव तत्व यानी कि यू योरसेल्फ वर्सेस बाकी के सारे लोग कर रहे हो, तब कुछ ऐसा है क्या कि आप दोनों के बीच में कुछ होता है जिससे आपको डिस्टिंक्शन करना पड़ा? कुछ तो कारण रहा होगा कि आप दो पार्टीशन कर रहे हो। याद देखो, आप और मैं एक साथ रहते थे, लाइक वी शेयर्ड अ रूम, ठीक है, आई केम टू दैट सिटी एंड वी शेयर्ड अ रूम एंड देन वी डिसाइडेड टू नॉट शेयर अ रूम, तो कुछ तो हुआ होगा, देन यू डिसाइडेड टू नॉट शेयर इट। ऐसे ही आपने बोला कि नहीं, यू आर नॉट मूविंग आउट ऑफ द सिटी, यू आर नॉट चेंजिंग योर जॉब, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, बट फिर भी अब आपको अकेले रहना है, सो देयर हैज टू बी सम रीजन, राइट? तो ऐसे ही आप जब कह रहे हैं कि एक मैं जीव तत्व और बाकी के सारे अजीव तत्व, तो आप ये जो डिस्टिंक्शन कर रहे हैं, इस डिस्टिंक्शन में कुछ तो कारण रहा होगा, कुछ तो जरूरत पड़ी होगी कि आपको जीव और अजीव पे डिफरेंस करना पड़ा। आपने जीव के साथ पुद्गल और धर्म और अधर्म और आकाश क्यों डिस्टिंक्शन नहीं किया? आपने दो ही भेद क्यों किए कि एक जीव और एक अजीव? आप चार करते, जीव, पुद्गल, आकाश और काल, ये तो चारों दिख रहे हैं क्योंकि मुझे स्पेस भी दिखता है, मुझे टाइम भी दिख रहा है, मुझे पुद्गल भी दिख रहा है, आपने दो ही पार्टीशन किए, तो कुछ तो रीजन रहा होगा। सो व्हाट इज दैट रीजन? मतलब आपका और इसका कुछ तो झगड़ा हुआ है, एंड दैट झगड़ा, दैट फाइट हैज रिपरकशंस। वो क्या है? वो ये पांच चीजें हैं। सो ये पांच तत्व और कुछ नहीं है, ये जीव की भी पर्याय है और अजीव तत्व की भी पर्याय है। कैसी वाली पर्याय है? इन दोनों के कम्युनिकेशन से, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से जो पर्याय होती है, वो वाली पर्याय पांच तत्व की रहेंगी, ठीक है? हेलो,
हाँ जी,
राइट। तो इसलिए इन पर्यायों के हमेशा दो भेद रहेंगे। आश्रव कितने टाइप का? दो टाइप का। द्रव्य आश्रव यानी कि पुद्गल की अजीव की पर्याय वाला आश्रव, और भाव आश्रव यानी कि जीव की पर्याय वाला आश्रव। क्योंकि दोनों के बीच में इंटरेक्शन हुआ है तो दोनों के अलग अलग रिएक्शन रहेंगे ना। द्रव्य मोक्ष, अजीव तत्व का मोक्ष, भाव मोक्ष, मेरा मोक्ष, एवरीथिंग नाउ विल हैव टू, क्योंकि दोनों व्यूज रहेंगे अब आपके और इसके इंटरेक्शन से। अजीव पर क्या इम्पैक्ट पड़ा? वो उसका द्रव्य, वो द्रव्य पर्याय, और जो मुझ पर इम्पैक्ट पड़ा वो मेरी भाव आश्रव, भाव बंध, भाव निर्जरा, भाव संवर, भाव मोक्ष, ठीक है?
हाँ,
यहाँ तक ठीक है, कोई डाउट नहीं, राइट? तो ये वाली पर्याय, ऐसा नहीं है कि आश्रव जीव को ही होता है, क्योंकि जीव में कर्म आ ही नहीं सकते, दोनों के बीच में अत्यंत भाव की दीवार खड़ी है। हम वी कैन नॉट कॉन्ट्राडिक्ट, हम अपने खुद के फंडामेंटल से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते। जब अत्यंत भाव है तो जीव बंधेगा कैसे? बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है ना, जब छूता ही नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की पर्याय को छूता ही नहीं, तो फिर बंधने की बात कहां ले आए आप? हाउ इज इट इवन पॉसिबल, राइट? तो यहाँ पर दोनों की पर्याय चलेंगी। वी डू नॉट हैव टू मैच विद द फंडामेंटल्स, हमारे फंडामेंटल्स नहीं बिगड़ने चाहिए यहाँ पर कि नहीं नहीं जीव को कर्म आ रहे हैं, जीव से कर्म बंध रहे हैं। वो बंध रहे हैं ऐसा कहा है, व्यवहार से कहा जाता है, निश्चय वस्तु स्वरूप में निश्चय के जो नियम है, छह सामान्य गुणों की जो एक व्यवस्था है कि अस्तित्व है, वस्तुत्व है, द्रव्यत्व है, अगुरु लघुत्व है, प्रमेयत्व है, प्रदेशत्व है, चार अभाव की जो व्यवस्था है, प्राग भाव, प्रध्वंस भाव, अन्यन्य भाव और अत्यंत भाव, ये इनकी व्यवस्था कभी वॉयलेट नहीं होगी रियल फंडामेंटल्स में, ठीक है। तो ये हम जो भी अब बातें करेंगे, इनकी दो पर्याय बनाएंगे, दो पर्याय में से जो द्रव्य की पर्याय होगी वो हम ये बताएंगे कि देखो इसके कारण, ये वाले परिणाम के कारण पुद्गल ने ऐसे रिएक्ट किया, अजीव ने ऐसे रिएक्ट किया, और जो भाव है वो क्या था, वो जीव का परिणाम था, उसने ऐसा किया, ठीक है।
हाँ,
ओके। अब दो दो केसेस इसमें बनेंगे, एक तो जैसे कि हम दोनों एक रूम में रह रहे हैं, राइट, तो कुछ टाइम शायद मेरे कुछ करने से आपको गुस्सा आ जाए, और कुछ टाइम आपके कुछ करने से मुझे गुस्सा आ जाए, या फिर इफ आई डू समथिंग यू विल फील गुड, या फिर आप कुछ करो तो मुझे अच्छा लगे। तो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ मेरी अथॉरिटी चलेगी, करेक्ट। हेलो, मतलब यदि दो लोग रह रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बॉस है और दूसरे का कुछ मतलब ही नहीं है, राइट। तो ऐसे ही यहाँ पर भी कभी तो पुद्गल अजीव तत्व हावी होगा, पराश्रित परिणमन होगा, और कभी जीव तत्व के आश्रित परिणमन होगा। तो कभी हम देखेंगे कि देखो पुद्गल कर्म का उदय आएगा और जीव वैसा नाचने लगेगा, और कभी हम देखेंगे कि जीव परिणाम करेगा और कर्म थर थर कांप के जाने लगेगा, कर्म का उदय भी कुछ नहीं कर पाएगा, राइट। ये दोनों बातें बनेंगी अभी, जब मेजॉरिटी प्रीडोमिनेंटली पुद्गल कर्म का उदय अजीव तत्व हावी रहेगा, तब मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो कंडीशन रहेगी वो आश्रव और बंधु तत्व की रहेगी, और जब आत्मा हैवी होगा, आत्मा एक प्रीडोमिनेंट, एक डोमिनेट करने वाली पोजीशन को लेगा, तब वो संवर्ण, निर्जरा और मोक्ष की पर्याय होगी, और मोक्ष तक तो सब लोग अलग अलग छन जाएंगे।
मुझे यहाँ एक क्वेश्चन है कि वो, क्योंकि हम ज्यादा तो द्रव्य आश्रव, द्रव्य बंध वगैरह वहाँ पुद्गल की बातें करते हैं, तो फिर दूसरे जीव और अजीव, अजीव में सारे छह द्रव्यों क्यों ले आते हैं, क्या अकेला पुद्गल नहीं ले आते हैं?
हाँ, हम जब बात करते हैं तो हम पुद्गल की इसलिए मेजोरिटी से करते हैं क्योंकि हमें पुद्गल ही दिखता है, देयर ओनली फैमिलियर विद।
हाँ, क्योंकि दूसरे चार तो वो शुद्ध है, तो
स्वभाव में रहते हैं।
हाँ, सचिन भाई ड्रॉप थे क्या?
हनुमान कई गाथा छे?
अपने नौ
नौ नौ मोस्ट ले अपने धार कई
त्रिजी धार
धार नो चो नौ मो ओचे। थैंक यू।
पर आ लोको सचिन भाई ड्रॉप थे
क्या? जय जयेंद्र, हूँ करूँ छु पाछो कॉन्फ्रेंस। हाँ, एक सेकंड।
ओके ओके।
કેટલા વાગે શરૂ થયું હતું? આમનું વારે વારે ડિસ્કનેક્ટ થઈ જાય છે, તો કઈ આનું કઈ ઉપાય નથી?
હેલો અનુભવજી,
હા
અનુભવજી,
तो हम ये बात कर रहे थे कि पुद्गल की हम बात मेजॉरिटी से इसलिए करते हैं क्योंकि ये आयरनी है कि मैं खुद जीव हूँ और मैंने अपने आप को कई बार देखा भी होगा, लेकिन मैंने कभी मुझे पहचानी नहीं है कि मैंने अपने आप को देख लिया है, राइट? क्या मैंने एक ही द्रव्य से इतना ज्यादा दोस्ती बनाई है कि मैं उसके अलावा सब भूल गया हूँ, अपने आप को भी। तो मैंने अजीब पुद्गल को ही देखा है जो रंग वाले हैं, दिखने वाली चीजें हैं। आकाश में रहता हूँ बट मुझे आकाश को मैंने नहीं देखा। काल से मैं पूरा परिणमन करता हूँ बट मैंने काल के बारे में सोचा ही नहीं। धर्म अधर्म तो फिर बहुत ही अलग डीप हो गया लेवल। इसलिए हम पुद्गल को समझने के लिए और आसपास की बातें करते हैं, बाकी सारे द्रव्य लिए जाते हैं क्योंकि सारे द्रव्य हमसे अलग हैं। उसको बताने के लिए तो आप डजंट मैटर कि आप कितनों को जानते हो, नहीं भी जानते हो, लेकिन जो है वो आपसे अलग है जो भी है।
हाँ, वो तो बराबर है,
ठीक है।
परंतु मुझे वैसे एक क्वेश्चन हुआ कि जीव और पुद्गल अगर ले वे, क्योंकि ये सारा हमारा कर्म बन, क्योंकि दूसरे तो वैसे भी शुद्ध द्रव्य है
तो। नहीं, लेकिन लेकिन अभी आप देख रहे हो रिजल्ट को, आप कह रहे हो आश्रम में किसमें हुआ, कर्म आ रहे हैं इसलिए आश्रम हुआ, तो आप कह रहे हो कि पुद्गल को लो, आकाश को मत लो, काल को मत लो, राइट? ये आपका क्वेश्चन है, राइट? बट कर्म के कारण कर्म का बंध नहीं हुआ है। सी, कर्म का बंध तो होता है बट कर्म के कर्म को किसने देखा है? आपको कर्म तक कभी गुस्सा आया ऐसे, यार कर्म क्यों आ रहे हो मेरे पास? आपको तो पता ही नहीं कि कर्म है भी कि नहीं है। आपको तो ये इतना सुंदर माउंटेन देखकर कर्म आया है, आपने तो कितना सुंदर ब्यूटीफुल स्काई टुडे वी हैव। तो हमें ये पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, राग, द्वेष इन पांच द्रव्यों से ही होगा और उसके कारण कर्म आएगा। तो आश्रव का कारण कर्म नहीं होता, आश्रव हमारे राग द्वेष के परिणाम, राग द्वेष का स्वभाव से नहीं होता, वो हमेशा पर वस्तु प्रभाव से होगा। तो वो पर द्रव्य अजीव तत्व और उसमें सब आएंगे, इसके लिए अजीव तत्व की पर्याय बोली है आश्रव को, अकेली कर्म की पर्याय नहीं है आश्रव। जो आपके राग द्वेष कर्म के आने में निमित्त बनते हैं, तो वो सारे राग द्वेष के विषय वो अजीव ही होंगे। जीव अपने आप से हम क्या राग द्वेष करेंगे? ठीक है,
हाँ।
तो अभी जो आश्रव होगा और बंध होगा, इन सब में क्या रहेगा? अथॉरिटी किसकी चल रही है? मेजॉरिटी कि अभी लाइक मुझे भूख लगेगी एंड आई एक्चुअली गो लाइक मुझे भूख लगी है, थोड़े टाइम बाद मेरी बॉडी में कुछ डिसीज हो गया, आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम नॉट फीलिंग गुड। अभी मतलब हम कर्म के उदय के अधीन चल रहे हैं क्योंकि वी हैव नॉट अंडरस्टूड कि क्या है हमारे पास, हमारा हमारी क्या शक्ति है, राइट? तो जब ये पहला लेवल होता है, इसमें एकदम फर्स्ट लेवल पर मेजॉरिटी अथॉरिटी होती है कर्म के उदय की, कि आपने बहुत अच्छे भी तत्व चर्चा करी, सब कुछ किया एंड अचानक से फिर बाद में किसी ने कुछ बोल दिया एंड दैट वुड नॉट इवन बी रेलेवेंट, वो कोई भी बात हो सकती है, लेकिन आपके चारित्र मुह कर्म का उदय तीव्र होगा, क्रोध का उदय होगा, तो आपको वहां पर इतनी अच्छी चर्चा करने के बाद भी गुस्सा आ जाएगा, यू विल नॉट इवन रियलाइज, आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि क्रोध आपने नहीं किया, वो कर्म के उदय आपको करा गया है। वो हमें रियलाइज ही नहीं होता, हम इतने ज्यादा हमारे पास सोचने का टाइम ही नहीं है कि गुस्सा करना कि नहीं करना, कि ये वाली कोई बात भी है गुस्सा करने की कि नहीं है। इतनी छोटी छोटी सी चीजों में हमें हर्ट हो जाता है, छोटी सी बात में हमारा ईगो हर्ट हो सकता है एंड वी डू नॉट इवन रियलाइज कि वो तो यार कोई बात ही नहीं थी, वो तो कुछ था ही नहीं, उसमें बुरा लगने जैसा क्या था, हम उसको इग्नोर कर सकते थे, हमें बहुत बाद में रियलाइज करते हैं। बट वो कर्म के पीछे हम इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उसका जाल इतना अच्छा बुना हुआ है कि हमें सोचने का मौका ही नहीं मिलता कि नहीं ये वो करा रहा है, मैं नहीं कर रहा, आई हैव माई ओन अथॉरिटी एंड आई कैन डिसाइड कि मुझे नहीं करना है। और धीरे धीरे जैसे हम तत्व ज्ञान के अभ्यास से वस्तु स्वरूप को समझना स्टार्ट करते हैं, वैसे वैसे हम अपनी अथॉरिटी, हम अपना स्टीयरिंग व्हील खुद लेना स्टार्ट कर देते हैं। फिर अब धीरे धीरे आपको, और ये वाली बात बहुत मोटे लेवल से शुरू होती है, ये शुरू होती है शरीर से। आपका सिर दुख रहा है, पेट दुख रहा है, आप बोलते हो नहीं नहीं पेट नहीं दुख रहा है, कोई बात नहीं, शरीर तो पर है, तो पाप का उदय है, आया है, चला जाएगा। आप अपने आप को संबोधना शुरू करते हो, राइट, ऐसे स्टार्ट करते हो, क्योंकि भेद ज्ञान की स्टार्टिंग ही ये है कि हम शरीर से ही भेद ज्ञान जिनागम में कराया जाता है, ठीक है। पर वो एकदम, ये एकदम प्रिलिमिनरी लेवल का है कि आप पहला भेद ज्ञान अघाती कर्म के उदयों से ही करते हो, क्योंकि वो इजी है, वो दिख रहे हैं आपको,
बराबर,
राइट। आप शरीर से करोगे, शरीर में बुखार आ गया, बुखार से करोगे, किसी ने आपको धोखा दे दिया, किसी ने चोरी कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, आप उससे बोलोगे चलो ठीक है, अब उसका पाप का होता है, वो जाने, कोई नहीं, अब वो समझ रहा है कि उसने मेरा बुरा किया, बट उसके भी तो कर्म बंधे, कोई बात नहीं, उसकी वो जाने। तो हम ऐसे खुद को समझाते हैं, कंसोल करते हैं, राइट, कुछ बुरा हो गया, सो वील ट्राई टू कंसोल अवरसेल्फ, राइट। तो पहला वेद ज्ञान, अब धीरे धीरे, दैट इज द साइन, वो एक साइन है कि हमने खुद की अथॉरिटी लेना शुरू कर दिया है, वी हैव स्टार्टेड टेकन द ऑनरशिप हमारे खुद के परिणामों की, कि बाहर में ठीक है, कहीं आग लग गई कोई बात नहीं, कुछ एक्सीडेंट हो गया कोई बात नहीं, फ्रैक्चर हो गया कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। आप धीरे धीरे अब समता को बुलाने लगे हो, साम्य भाव की तरफ आप आने लगे हो, बट ये बहुत स्टार्टिंग के लेवल का है। जब तक ये लेवल नहीं है तब तक तो हम कर्म के उदय के अधीन है, और ऐसे जीव का कोई भरोसा नहीं है। इतना बोलते ना कि हमें स्वाध्याय करना चाहिए, पाठशाला में जाना चाहिए, इट्स नॉट कि इससे आप बहुत रिलीजियस बन जाओगे और आप इससे मोक्ष में सीधे चले जाओगे, नहीं। ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये नॉट ओनली हमारे आगे के भव को बनाने के लिए है, बट दिस इज अ वेरी फर्स्ट कंडीशन कि मैं इस भव में भी अपने आप पर ट्रस्ट कर पाऊं, राइट। देखो क्या हुआ, प्रद्युम्न कुमार थे, प्रद्युम्न कुमार को किडनैप कर लिया संवर काल, संवर नाम के देव ने बचपन में श्री कृष्ण राजा के महल से ही, राइट, उनके बेटे को कर लिया, जाके शिला के नीचे दबा दिया, वो शिला हिलती रही और वहां से वो विद्याधर आए और उन्होंने उसको देखा और बोले शिला कैसे हिलती, उनका विमान रुका, वो नीचे गए तो उन्होंने देखा इतना सुंदर बालक शिला में दबा हुआ और वो खेल रहा है, तो उन्होंने उसको लिया और अपने पास लेके गए। उनके पास बेटा नहीं था, एंड दे वांटेड बेटा, राइट, बहुत मतलब उनके पास बच्चे ही नहीं थे किसी के पास भी, तो इतने प्यार से उन्होंने रखा, राइट। यू जस्ट इमेजिन कि यार जिस मम्मी को बेटा चाहिए और उनको बेटा मिल जाए कितने खुश होंगे वो, राइट, एक छोटी मोटी बात नहीं है। एंड दैट वो उनका जो बेटा उन्होंने वहां पर लिया, वो उनके साथ 16 साल तक उनकी आंखों के सामने बड़ा हुआ, राइट। बट ये कर्म को ऑनरशिप देने का प्रॉब्लम इतना है कि आपका कुछ आप पर भरोसा नहीं है। 16th ईयर में वही मम्मी जिन्होंने उसको बड़ा किया बेटा मानकर, वही अब उससे कुछ और देखने लगी। समझ में आई आपको बात, वही बेटा जिस पर पहले प्रीति थी, अब उसके प्रति काम जागृत हुआ है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वो डिस्टिंक्शन नहीं है कुछ, अब कुछ ईमान नहीं बचा, जैसा कर्म नचाता है वैसे नाचते हैं, विवेक कहाँ चला जाता है पता नहीं पड़ता। कर्म के उदय में यदि हमने अपनी ऑनरशिप नहीं देखी है, तो देखो 16 साल तक जो बेटा रहा, जिसको एकदम ऐसा भी नहीं बोला कि ये मेरा नहीं है, मेरा ही बेटा है, राइट। और वो जहां पर पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, कोई भी काम कषाय का उदय उदय आएगा, तो वहां पर वो विवेक कहाँ गायब होता है हमको नहीं पता। तो क्या है ये ऑनरशिप, किसकी है, हु हैज द स्टीयरिंग व्हील, ये कर्म के पास है। तो स्वाध्याय का मतलब सिर्फ ये ही नहीं है कि हम अगले भाव में स्वर्ग और उसके बाद मोक्ष चले जाएंगे, नहीं। यदि आप स्वाध्यायी है तो आई कैन ट्रस्ट ऑन यू, मुझे पता है कि आप अभी मेरे साथ अच्छा सोच रहे हैं, कल को मेरे साथ बुरा नहीं सोचेंगे। क्यों? क्योंकि कर्म के उदय पर नोबडी हैज कंट्रोल, बट वो कर्म के उदय से मुझे प्रभावित नहीं होना है, दैट इज ऑन मी, वो मेरे ऊपर है। कर्म तो जो बंदा है वो आएगा, उसको नोबडी कैन स्टॉप, दिखता ही नहीं है तो रोकेगा कौन उस कर्म को। दिखता होता कि चलो कर्म का उदय आने वाला है उसको रोक दो, कर्म तो दिख ही नहीं रहा है, कर्म का उदय दिखता है।
बराबर।
तो यदि जिसके पास ये फर्स्ट लेवल का भी अघातिया कर्म का भी भेद ज्ञान नहीं है, आप उस पर विश्वास कैसे कर सकते हो? क्या हुआ सीता जी के साथ? क्या हुआ राम, जब सीता जी बोलती कि नहीं मैं आरेखा बनूंगी, राम रो रहे हैं कि प्लीज रुक जाइए, आप रहते हैं हम लोग साथ में रहेंगे। नहीं, सीता जी ने बोला नहीं, हम तो आरेखा बनेंगे, हमने देख लिया जगत का ये स्वार्थी वृत्ति और हमको इस संसार में रहना ही नहीं है, ये तो रहने वहां लव कुश उनके बेटे रो रहे हैं, लक्ष्मण रो रहे हैं, हनुमान रो रहे हैं कि रुक जाइए मत लीजिए दीक्षा, हो गया वो, नहीं नहीं अब तो अग्नि परीक्षा सब कुछ हो गया उनके साथ, कितना बुरा हुआ, तीन तीन बार वनवास हो गया, क्या नहीं हुआ उनके साथ। खुशी सेट के नहीं नहीं आई विल गो, आई विल गो, ठीक है, अब ये तो सम्यक दृष्टि की चीज है अभी। हाँ। और उसके बाद वो दीक्षा लेंगे और वो फिर स्वर्ग में जाएंगे। अब यहाँ पर लक्ष्मण की मृत्यु हुई, राम बहक गए और फिर उनको वैराग्य भी हुआ बाद में संबोधन से और उन्होंने दीक्षा ले ली। तो अब जो सीता का जीव है जो पहले वैराग्य के लिए इस पे पड़ा था, अब उसके क्या परिणाम है राम को देखकर कि नहीं ऐसे तप करते रहते हैं तो मोक्ष चले जाएंगे, नहीं नहीं, एंड शी केम, यहाँ नीचे उन्होंने राम मुनिराज पर लिटरली उपसर्ग किया कि नहीं आप अभी क्यों, वो सीता का रूप बना के आए, उनको लुभाना चाहे कि नहीं आप क्यों, आप मुझे भूल गए क्या, मैं सीता हूँ, अभी हम स्वर्ग में साथ में रहेंगे बाद में साथ में मोक्ष चले जाएंगे। तो ये वाला ऐसा परिणाम, मतलब ये कोई धर्मात्मा जीव भी करेगा, यदि सामने मुझे मुनिराज दिखेंगे और मैं खुद ही उस संयम के मार्ग से पिछले भव में गुजर के आया हूँ तो वुड आई डू दैट, क्या मैं वो करूंगा? मुझे तो और प्रसन्नता होनी चाहिए कि अरे आपको इतने बढ़िया मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हो, वैसे भी देव हूँ तो मैं उनकी पूजा करने आऊँ, मुनिराज है वो, राइट। बट जब ये कर्म अथॉरिटी ले लेता है देन जीव अपना विवेक खोने लगता है, उसको सोचने की भी शक्ति नहीं बचती, राइट। इसके लिए ये वाले जो सात तत्व का डिस्कशन है, सात तत्व की चर्चा है, ये अकेली अगले भव को बनाने या मोक्ष मार्ग को बनाने के लिए बस नहीं है। आप अपने परिवार को यदि सात तत्व दिखा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपको उनको रिलीजियस बनाना है, यू आर इंश्योरिंग योर सेल्फ कि ठीक है मुझे कुछ भरोसा तो रहे इनका, इनके आज परिणाम ऐसे है, कल को यदि इनको कदाचित मोह का परिणाम आता है, माया का परिणाम आता है, छल का परिणाम आता है, तो ये उस परिणाम से भेद ज्ञान करके स्थिरता रख पाए कि उसके साथ ही बह जाएंगे ये भी, राइट। वो वाली कहानी बहुत फेमस है इसमें, वो दो भाई एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, उनको उनके रिलेटिव ने रत्न दिए, हीरे बहुत गरीब थे बट उनके रत्न वहां रखे हुए थे, दूसरे फ्रेंड के पास पापा छोड़ गए थे तो मम्मी ने भेजा था कि वहां से लेके आओ। अब वो दोनों लौट रहे हैं जंगल में रास्ते में, दोनों भाई बचपन से साथ में इतना प्यार, और फिर अचानक से उनके मन में विचार आए कि कितना अच्छा हो मैं इस भाई को मार दूं तो क्या होगा, राइट। मेरे को पूरे रत्न मिल जाएंगे। तो दोनों ऐसा सोच रहे थे, चलते गए एक दूसरे को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, फिर अचानक से उनको स्ट्राइक कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं इन रत्न के कारण, दोनों भाई सोच रहे एक दूसरे के लिए। हाँ, फिर उनको स्ट्राइक हुआ तो उनको ऐसा लगा कि सबका कारण ये रत्न ही है, उन्होंने रत्न कहाँ फेंक दिए, तालाब नदी में फेंक दिए, नदी में मछली थी, मछली के पेट में चले गए, मछली को किसी मछुआरे ने पकड़ा, वहां से उसके पेट से रत्न निकले, रत्न निकले तो वो वापस इनकी फैमिली में पहुंचे कहीं से, और उसकी जो माँ और बेटी थी उन दोनों के बीच में ऐसे परिणाम हुए, ऐसे घूम घूम के बहुत सारी जगह से, बहुत ऐसी स्टोरी है मुझे अच्छे से याद नहीं है, बट द पॉइंट इज कि ये वाली जो चीजें हैं, ये जो परिणाम है माया के, क्रोध के, छल के, ये वाले परिणाम सबको आएंगे क्योंकि इनका बंद किया है, राइट। उसका कारण क्या है सबको आएंगे, व्हाट इज द प्रूफ डू आई हैव कि हम इस निकृष्ट काल में जन्म लिए हैं, तो हमने इसमें जन्म लिया है तो कुछ अच्छा काम करके नहीं लिया है। द सिंस द फैक्ट दैट वी हैव टेकन बर्थ इन दिस टाइम पीरियड इज द ओनली प्रूफ कि हमने अच्छे काम नहीं किए हैं. यदि हम सम्यक दृष्टि होते तो भोग भूमि में लेते हैं, स्वर्ग में जाते, कहीं और जाते, और कहीं होते, ऐरावत क्षेत्र में हो जाते. ऐरावत क्षेत्र में भी क्या होते हैं अभी तो वहां भी चल रहा हो वही पर विदेश क्षेत्र में हो जाते. बट दिस इज द ओनली प्रूफ कि हाँ हमने कुछ तो गड़बड़ करी है. तो करी है मतलब कर्म के उदय आएंगे और वो अकेली बाहर से वेदना होगी ऐसा नहीं है. बाहर से बीमारी हो वही कर्म का उदय नहीं होता. अंतरंग से छल का परिणाम, फैमिली में कुछ बुरे का परिणाम, फ्रेंड के साथ कुछ और बुरे का परिणाम, तो ये सारे परिणाम तो बंधे हुए हैं आएंगे. कभी ना कभी कुछ ना कुछ आएगा. क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का, काम का, क्रोध, ये सारे परिणाम आएंगे. बट क्या हमने अपनी ओनरशिप ले रखी है कि जब वो परिणाम आए हम उन पर और अपने आप पर एक भेद ज्ञान डिस्टिंक्शन कर पाए कि नहीं ये कर्म का उदय जरूर बोल रहा है पर ये करने योग्य नहीं है, ये मेरे करने योग्य परिणाम नहीं है. इसके लिए ये वाला तत्व ज्ञान बिकम्स अ कंपल्सरी सब्जेक्ट ऑफ लाइफ जिससे इफ आई एम विद यू आई कैन ट्रस्ट ऑन यू कि आपके मेरे प्रति परिणाम और मेरे आपके प्रति परिणाम बुरे तो आएंगे शायद कभी, लेकिन आने पर मैं भेद ज्ञान कर पाऊं, उन परिणामों की अधीनता में कोई काम ना करूं, उनके इन्फ्लुएंस में कुछ ना करूं. मोह महामद पियो अनादि, ये शराब है. जब कर्म इसको लेता है अपने हम को उसके इन्फ्लुएंस में लेता है तो वी आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कर्म. वो जो बोलता है वो करते हैं. राइट. हेलो हेलो.
हाँ जी हाँ जी.
हाँ ठीक है. तो इसके लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो कर्म अभी हम करेंगे पांच तत्वों की चर्चा जो हम कर रहे हैं ये टू वे प्रोसेस है, वन वे नहीं है. यहाँ अजीव तत्व की भी आश्रव पर्याय है और जीव तत्व की भी आश्रव पर्याय है. बंध भी अजीव जीव दोनों का है, यहाँ तक कि मोक्ष भी अजीव जीव दोनों का है. कर्म का कर्म रूप ना रहना, कर्म का जीव के साथ एक क्षेत्र कर्म रूप ना रहना, यही तो मोक्ष है. तो वो कर्म का मोक्ष क्या है कि वो जीव से अलग हो जाए. जीव का मोक्ष क्या है कि वो सर्वज्ञ केवल ज्ञानी अशरीरी बन जाए. तो इन सब की ये सबकी पर्याय है. बट चूंकि ये दोनों की पर्याय है मतलब इन दोनों का आपस में कुछ कॉन्टेक्ट तो है. वो कॉन्टेक्ट में क्रक्स है कि कौन किस पर इन्फ्लुएंस कर रहा है. हम उद्गल द्रव्य की चलाए चलते हैं कि वो कर्म हमारे चलाए चलते हैं. मतलब वो कुछ बोले तो डू वी डिसाइड किए करने जैसा है कि नहीं करने जैसा है. अब यदि आपको अभी भक्ति का परिणाम हो रहा है भगवान के पूजन का परिणाम हो रहा है तो ये मत सोचिएगा कि आपको आपने किया हो परिणाम, वो भी कर्म के उदय के कारण ही हो रहा है अभी. बट नाउ यस आपके पास ना अथॉरिटी कि चलो ये अच्छा परिणाम है, लेट्स डू इट. अभी आप बैठ कर टीवी देखकर कुछ और फालतू की बातें करने से अच्छे हम भगवान की भक्ति में लगे. तो डिसीजन आपको लेना है. कर्म आपको परिणाम कराएगा. जब तक हम डिसीजन ना लेके कर्म जैसा बोलता है वैसा करने लगते हैं वो वाला स्टेट इज बैड. वो कोर संवर निर्जरा का वहां पर प्रवेश हो ही नहीं सकता. संवर निर्जरा के लिए इसलिए अब यहाँ पर पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं शम दम ते जो कर्म न आवे तो संवर आदरिये. अभी जो आश्रव बंद था वहां पर कर्म अपने आप को बुला रहा था क्योंकि हम अपने आप की सुन ही नहीं रहे थे. अब यहाँ पर वी हैव टेकन द चार्ज. आप सबको मेरी आवाज आ रही है?
हाँ जी हाँ जी.
हेलो.
हाँ, हाँ,
हाँ
आ रही है.
तो नाउ अब हमने चार्ज लिया है. वी हैव टेकन द अथॉरिटी ओनरशिप अपने आप की कि नहीं आई एल नॉट अलाउ कर्म टू डू एनीथिंग व्हाट एवर इट थिंग्स. जो कर्म बोलेगा वो मैं करूंगा, दिस विल नॉट हैपन. ये यहाँ नहीं होगा. कर्म को और कहीं करना है कर ले. ठीक है. तो क्या बोला?
हाँ.
शम दम. शम मतलब होती है समता. इसको बोलते हैं कषायों का शमन। कषाय ना करना वही समता है, वही शमन है कषायों का, ठीक है। फर्स्ट थिंग कषाय, कषाय मतलब आपके घातीय कर्मों के उदय, सिंपल, ठीक है। घातीय कर्मों का क्या होगा? उदय होगा। उसमें क्या होगा? कषाय उत्पन्न होंगी, मोह राग द्वेष उत्पन्न होगा। उसमें क्या करेंगे हम? उसको अभाव जैसे उत्पन्न होगा, उसने बोला कि क्रोध करो, हम बोलेंगे हमें नहीं करना है, नो आई डोंट वांट टू डू इट, आई डू नॉट सी अ रीजन टू बी एंग्री एट दिस पॉइंट, मुझे कारण ही नहीं दिख रहा। उसने जो किया वो उसका अपराध है, मेरा नहीं है, मैं क्यों गुस्सा करूं? उसको गुस्सा करना चाहिए अपने ऊपर कि उसने क्रोध कर लिया, उसने मुझसे कुछ बुरा बोला है, उसने अपने मुंह से बोला है, उसने मेरे शब्द खराब नहीं किए, उसने अपना बुरा किया है, मेरा नहीं किया कुछ बुरा बोलकर, मैं क्यों क्रोध करूं उस पर? करेक्ट। तो ये शब्द तुरंत वहां पर ब्रेक लगाना, कषायों की उत्पत्ति के कारण विद्यमान होने पर भी, कषायों के कारण विद्यमान होने पर भी कषाय ना करना, अपने आप को संबोधन करना, अपना स्थितिकरण करना, जैसे शम, ये पहला शम है, ठीक है। शम मतलब कषाय का शमन या फिर समता भाव, माध्यस्थ, मुझे नहीं, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बोल रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आना, मुझको घमंड हो ही नहीं सकता, किस बात पर घमंड करूं मैं, किस बात पर, मैं किसके साथ छल करूं, उसके साथ करूंगा तो मैं अपने आप के साथ ही तो कर रहा हूं, मैं किस चीज का लोभ करूं जब मुझे किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है, जो चाहिए वो तो है मेरे पास, इतना है जितना मुझे चाहिए, मैं लोभ किस चीज का करूं? तो ऐसे क्रोध मान माया लोभ, इनको इनके कारण होने पर भी इनको दबा देना, इनको विद्यमान होने पर भी इसके कारण उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना, ठीक है। ये पहला लेवल है, दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ टेकिंग ऑनरशिप, ये अंदर से होगा, क्योंकि आंतरिक घातीय कर्मों के निमित्त से होते थे ये कषाय, इन घातीय कर्मों के निमित्त से होने वाले कषाय परिणाम को तत्व ज्ञान के जल से ही रोका जा सकता है, तत्व ज्ञान से ही आप उसको संभाल पाओगे कि नहीं, वो यदि कुछ बुरा कर रहा है तो मेरा नहीं कर रहा, उसके परिणाम, उसके कर्म, उसका जाने वो, जब तक उसके करने से मैं इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा हूं तब तक मेरा वो कुछ कर ही नहीं रहा है, राइट?
ठीक है।
एक कोई मैं आपसे किसी मे बी लाइक इफ यू डोंट नो स्पेनिश और कोई लैंग्वेज आपको नहीं पता है,
ये उदय तो ये अभी हमने बोला कि ये उदय तो आएगा आपके, तो अपने आप को संबोधना, तो ये उदय तो वैसे तो हमको ये सो नो कर्म जो हम बोलते हैं उसमें ही दिखाई देगा ना।
हाँ। नहीं, उदय ये आपको आपके ज्ञान में दिखेगा परिणाम, क्योंकि आपके परिणाम है। देखिए जो घातीय कर्म का उदय है ये बहुत सूक्ष्म है, इसलिए मैंने पहले बोला ना, हमारी फर्स्ट लेवल तो कहाँ से स्टार्ट होता है, हम शरीर से विज्ञान करते हैं,
वो तो शरीर को,
और आप समय सारजी में जाएंगे तो आश्रम से कराएंगे विज्ञान, वहाँ पर शरीर तो है ही नहीं, शरीर तो कहीं है ही नहीं वहाँ पर विज्ञान के लिए, तो वो लेकिन एडवांस लेवल है, क्योंकि वो शरीर जो है ये सामने दिखता है, और ये जो घातीय कर्म का उदय आपके नौ कषाय के परिणाम है, कषाय के परिणाम है, ये लगते हैं ये तो मेरी पर्याय है,
बराबर,
तो इसमें हम डिवीजन नहीं कर पाते कि मेरी नहीं, ये तो कर्म की पर्याय है, ये जो गंदा परिणाम मुझे अभी हो रहा है ये मेरा नहीं है, मैं इसका ज्ञाता हूँ, लेकिन ये कराया किसी कर्म ने है, और क्योंकि कर्म ने कराया इसलिए मुझे नहीं करना, ये बहुत बहुत ज्यादा इंटरनली जाकर ये वाला अभ्यास, इसका अभ्यास बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि इसमें हम बहुत जल्दी, क्योंकि सिचुएशन ऐसे ही होती है कि हम विचार ही नहीं कर पाते, हम डायरेक्टली कर देते हैं वो काम, क्रोध कर दिया, घमंड कर दिया, मान कर दिया, तो उसमें बहुत गंभीरता से विचार चाहिए। समाधि तंत्र में एक गाथा, उसमें लिखा है उन्होंने कि कोई भी कार्य, कोई भी विचार, कोई भी विकल्प उसके करने से पहले उन्होंने, वहां मुझे पूरे क्वेश्चन याद नहीं है बट उन्होंने 5 या 6 क्वेश्चन बताए, इनका विचार करो कि ये जो विचार हुआ है ये अभी क्यों हुआ, अचानक से आया है ना, क्या जो इसके संबंधी पूर्व विचार है, जो पुराना विचार है, ये उससे कुछ रिलेटेड है, कि हम सब आपस में बैठे थे और बात करते करते बात बात में बात बढ़ गई, तो कहां से आप हंसते हंसते, हमने देखा है ना हंसते हंसते कहां लड़ाइयां हो जाती हैं, राइट
हाँ.
right? आप किसी से मिलने गए और वहां पर उल्टा कुछ और हो गया कि आपको अभी दोबारा चेहरा नहीं देखेंगे, सो दीज सिचुएशन ये हमेशा बनती है बट आउट ऑफ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन बनती है, हमने सोचा नहीं था हो गया, तो वहां क्वेश्चन किया कि कोई भी परिणाम हो रहा है तो पहले देखो कि परिणाम अचानक से हुआ है कि क्रमबद्ध श्रृंखला में हुआ है, कि मैं पढ़ तो रहा था कि भगवान की पूजन भगवान की पूजन भगवान की पूजन, और अचानक से याद आया अरे घर पर तो गैस पर कुछ रखा छोड़ आया, तो ये अचानक से हुआ है ना,
हाँ,
ये तो यहाँ पर तो उसका कोई रेफरेंस नहीं था, यहाँ पर उसका कोई ओकेजन नहीं था, इट केम आउट ऑफ नोवेयर, तो अचानक से तो कुछ नहीं होता, कोई तो कारण रहा होगा, तो ये सारे जिनके कारण हमको अचानक से लगते हैं ये घातिया कर्म के उदय के कारण विकल्प है, आपको लगेगा कि आपने वो विचार किया है बट नो, आपने उसको जाना है, उसको करने वाला वो कर्म है, तो ये चूंकि उस कर्म ने किया है तो आप फिर विचार करो क्या इस विचार से मेरी आंतरिक परिणति में कुछ फायदा है, क्या कषाएं और तीव्र होंगी या मंद होंगी, तो उसने 3-4 वहां क्वेश्चंस दिए और फिर बोला फिर यदि वो काम करने योग्य लगे तो करना, आप लेकिन कोई इतना सोचने बैठेगा तो उसका गुस्सा तो यही गायब हो जाएगा, राइट बट ये बहुत अभ्यास की चीज है, अचानक से नहीं आती है, बहुत कंपोज होना पड़ता है उसके लिए अंदर से,
अलर्टनेस,
तो इसलिए बाहर बोला, इसलिए बात, इसलिए अगला वर्ड है दम, पहला हो गया शम, शम में तो अंतरंग कषायों की बात करती और दम में ये सारे अघातिया कर्म, मन वचन काय, सॉरी वचन काय मतलब इसमें इंद्रियां, तो ये जो बाहर की चीज है और मन है जो इच्छाएं करता है, ये इंद्रियां और मन, ये मन वचन और काय, तीन योग बोलो या इंद्रियां बोलो या मन बोलो, इन सब का दमन करना, देखिए कषायों का तो होगा शमन, कषायों का क्या होता है शमन, मतलब आप कषायों को शांत करते हो, वह आग लगी हुई है, और इंद्रिय और इच्छाओं का तो अटैक होता है, इट्स अ वॉर, कषायों का अटैक नहीं होता, वो तो एक आग के जैसे जलती है, तो आग को हम फायर बैक नहीं करते, हम उसके ऊपर पानी डालते हैं, आग से लड़ाई करने के लिए हम भी एक मशाल ले ले और हम दोनों लड़ते रहे तो आग बुझ जाएगी, नो दैट्स नॉट द वे, तो कषायों को आप कषायों से नहीं जीत सकते, आग को आप आग से शांत नहीं कर सकते, आग को शांत करने के लिए तो पानी चाहिए शीतल, ऐसी कषायों को शांत करने के लिए तो तत्व ज्ञान का जल चाहिए शांत एकदम, बट ये जो आपकी इंद्रियों के विषय है ना, इंद्रियां आपकी बोलती कि मुझे अच्छा खाना खाना है, आपका मन बोलता है कि नहीं यहाँ घूमने चलो, तो ये इंद्रिय और मन ये जो विषय है, ये जो इच्छाएं हैं, ये होते अटैक्स, ये अटैक है, आपको भूख लिटरली लगेगी, ऐसा नहीं है कि आपको भूख नहीं लगेगी और आपको इच्छा करो कि नहीं यार आज को कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, राइट और हाँ। अब आपको यहाँ पर जैसे कषायों को आपने इतने आराम से तत्व ज्ञान से सुलझा कर बात करी थी कि नहीं तुम्हें क्या फायदा है क्रोध करके, नहीं वो चला जाएगा, वो उसका काम, आपने सच्चे प्यार से समझाया था अपने आप को, यहाँ प्यार से नहीं समझाया जाता दमन में, यहाँ पर सीधे अच्छा आपको मीठा खाने का मन कर रहा है आज मेरे मीठे का त्याग है, इट्स लाइक अ स्लैप काउंटर स्लैप, जो 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 चित चाहे सो नित दाहे, जो जो मन इच्छा करे उसका त्याग करते जाओ, ये दमन है, दिस इज द वॉर, इसने मांगा है मतलब ये तो नहीं देना है इसको, यहाँ थोड़ा क्रुएलिटी है, यहाँ पर हमने ऑनरशिप बट एक बहुत बुरे वार्डन के जैसे लिए, जैसे हॉस्टल के वार्डन होते हैं ना वेरी स्ट्रिक्ट, तो बच्चे जो चाहेंगे वो हमेशा उसके अपोजिट ही काम करेंगे, तो ये शरीर और इसकी इंद्रियां और इसमें लगा हुआ ये मन, ये आत्मा के हित के बारे में बहुत कम सोच पाता है। इसको चाहिए तो खाना चाहिए, अच्छा देखने को चाहिए, अच्छा सुनने को चाहिए। तो अब यहाँ पर हमको चार्ज लेना पड़ेगा, और यहाँ पर अब कौन सी पॉलिसी चलेगी, यहाँ पर काउंटर अटैक वाली पॉलिसी चलेगी। समझाने बुझाने का काम नहीं होगा, आप समझा नहीं पाओगे इसको। क्या बोलोगे आपके, नहीं बेटा मीठा नहीं, कड़वा खा लो अच्छा लगेगा। यू कैन नॉट डू दैट राइट। यहाँ पर सीधे कि आप कैसे खा पाओगे आज मीठा, आज तो आपका त्याग है, आपका हरी खाने का मन तो, लेकिन आज तो तिथि है, तो आप जब अपने आप से बोलते हो कि आज तिथि है, तो आपका मन अपने आप खत्म हो जाता है हरी खाने का।
हाँ बराबर, हाँ।
राइट। तो आप उसको किसी और गुत्थी में उलझा दो कि नहीं आपको घूमने का तो मन है, लेकिन आज तो हमने सोचा था कि आज हम इस सिटी से बाहर ही नहीं जाएंगे, आज तो हमारा दिग्व्रत था, देश व्रत था, जो भी था। तो आप अब इसको बांधना शुरू करोगे। पहले उल्टा होता था, एक कर्म आपको लेके जाता था, शरीर बोलता था कि नहीं आज मूवी देखने चलना है, तो वो एकदम 30-40 माइल्स अवे भी होगा थिएटर, जहां भी होगा वील टेक वील ड्राइव द वे डाउन, कितनी महंगी टिकट्स होंगे, नहीं भी होंगे हमारे पास, जैसे तैसे सेव किए होंगे, वील डू दैट राइट। पहले ये आपको बाउंड करके घुमाता था, एंड नाउ यू हैव टेकन द ऑनरशिप। और अब ये जो बोलता है कि नहीं आज मूवी जाना नहीं, आज थोड़ी देर मंदिर में जाके भक्ति करेंगे, सो नाउ यू हैव टेकन द चार्ज। ये है दमन, शम दम, ये दो चीजें हैं, इनके कारण कर्म आ ही नहीं पाते बेचारे के पास। कर्मों के पास उनका इनफ्लो 70% मान लो टूट गया, अब वो आ ही, उनके पास आने की रीजन ही नहीं बचे, पहले बहाने थे उनके पास, राइट। आप शम और दम के बारे में थोड़ा सोचिएगा और थोड़ा इसमें पढ़िएगा भी, इसमें भावार्थ में जो दिया है, शम दम ते जो कर्म ना आवे। हम पहले समराइज करते, हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि पूरे लोक में सिर्फ 6 द्रव्य हैं, और वो 6 के 6 द्रव्य जीव और अजीव तत्व के अंदर सारे आ जाते हैं, मतलब इसके बाहर अब कुछ नहीं बचा। तो ये 5 आश्रोगन समय निद्रा की कहानी आप कहाँ से लेके आ गए कि ये इन दोनों की आपने डिस्टिंक्शन किया है ना, अकेला आप और वर्सेस एवरीबडी एल्स, तो इन दोनों के बीच में कुछ इंटरेक्शन होता होगा, कुछ तो कारण है जो आपने डिस्टिंक्शन किया है। वो जो कारण है ना, वो ये 5 तत्व है। तो जब ये जो अजीव तत्व है ये आप पर रूल करता है, तो आश्रय बंध पर आप झूलते हो, मेजोरिटी कह रहा हूँ, ठीक है, हम मुख्यतः की अपेक्षा बात कर रहे हैं, ठीक है, नहीं तो ज्ञानियों के भी आश्रय बंध होता है, बट अभी हम मिथ्यात्व सहित वाली की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जब आप अपनी ओनरशिप ले लेते हैं तब संवर निर्जरा होता है। तो दो है तो दोनों में आपस में एक हावी होगा और एक उससे डोमिनेट हो जाएगा, एक सुपीरियर होगा एक इंफीरियर होगा। तो जब यू आर द सुपीरियर वन तब आप चार्ज ले पाते हो, एंड देन यू कैन डिसाइड कि आपका फ्यूचर आपको कैसे रखना है। और जो अभी प्रॉब्लम चल रही है उसके लिए ये सुपीरियोरिटी का बहुत बड़ा एक महत्व है। इससे इंटरनल डिफरेंसेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे हमारे कषाय के परिणामों में और वास्तविकता के विवेक में। क्योंकि आजकल कितना हो रहा है, नहीं तो आपने तो देखा हर जगह कपल्स में, हस्बैंड वाइफ में, भाई भाई में, फैमिलीज में कितने बड़े डिफरेंसेस हो जाते हैं, चीट कर लेते हैं लोग अपने पेरेंट्स को, अपने बेटों को, कितने सारे डिफरेंसेस छोटे छोटे एक एक परिणाम के कारण बन जाते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि वो कर्म ने तो एक वहां पर एक चीज छोड़ दिया है उदय, और हम उसके इन्फ्लुएंस में आ गए, हम वहां विज्ञान नहीं कर पाए, हम उसको पहचान भी नहीं पाए, कह रही ये मैं कर ही नहीं रहा था, ये तो कर्म बोल रहा था कि करो करो, राइट। तो इसका रेफरेंस, इसका क्या बोलते हैं, आज के टाइम्स में इसकी क्या बोलू, नेसेसिटी is very very much। ये जो इतनी चीजें हैं, लोगों को लग सकता है कि आप क्यों धर्म धर्म कर रहे हो, बट ये धर्म नहीं है, ये मूल वस्तु के विचार को ध्याने की, दुनिया को देखने की बहुत अच्छी कला है। आपके पास यदि ये है तो आपकी लाइफ सॉर्टेड है, बिकॉज़ यू आर द इंचार्ज ऑफ योर ओन लाइफ, राइट,
बराबर है,
ठीक है। तो इस शम और दम पर हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कशन करते हैं, आज बहुत टाइम हो गया हमारा। और आप लोग भी इस पर सोचिएगा, इंटरनल है, कषाय परिणाम, वो आग है, उसको बुझाया जाता है, और दम ये बाहर का काउंटर अटैक है, अजीब का, शरीर का, इच्छाओं का, इसको दबाते, इसको बुझाते नहीं है, इस पर काउंटर अटैक करते कि ये जो बोल रहे हैं उससे अपोजिट। आज बहुत तीन बार खाने का मन है, आज मेरा एक आसन है, राइट, सो दैट वे आप हमेशा इसको उल्टा दो, जिससे थोड़े टाइम बाद ये मांगना बंद कर देगा, इट विल नॉट आस्क। जैसे आपने कभी शुरुआत में रात्रि भोजन का त्याग किया होगा, पहले करते होंगे और फिर छोड़ा होगा, तो बहुत टफ लगा होगा, बट एक दो साल बाद यूजुअल हो गया कि आप कोई बात नहीं, रात होती तो आपको भूख नहीं लगती, अपने आप नहीं लगती।
बराबर,
क्यों? क्योंकि आपने इसको काउंटर अटैक करके सिखाया कि नहीं ऐसा नहीं करना है। ऐसे ही हम सारी इंद्रियों के विषयों में इसको बताते जाएंगे, अपने आप बॉडी अडेप्ट करेगी, इसको पता पड़ेगा कि नहीं ये वाली चीज की इच्छा नहीं करनी। हमको नॉन वेजिटेरियन खाने की इच्छा नहीं होती, आलू प्याज खाने की इच्छा नहीं होती, क्यों? वे ट्रेन देख दैट वे। ऐसे ही हम यदि इसको सारी इच्छाओं के अगेंस्ट ट्रेन कर देंगे तो हमारे अंदर समता का एक पूरा समुन्द्र आ जाएगा, और क्योंकि वो इच्छा ही नहीं करेगा कुछ थोड़े टाइम बाद, राइट? ठीक है, तो आप लोग इस पर विचार करना, हम नेक्स्ट क्लास में इसको और आगे डिस्कस करते हैं।
वेरी इंटरेस्टिंग।
ठीक है, चलिए अजिन वाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को कष्ट नाशक पार है, उसके लिए चिन वाणी माँ को कष्ट नाशक पार है। थैंक यू।